वचन। नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने बुराई और अच्छाई के परस्पर तुलना को देखा था, जिसमें हमने जीभ और उसके कार्यों को भी देखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक होइए ताकि हम जीवित वचन को समझ सकें, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन से निराश हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, दबाव में हैं या किसी प्रकार से प्रभु अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके जीवन से बोले और बातचीत करें ताकि वे समझ सकें कि ये जीवन उनका नहीं, आपका है। आपने उन्हें दिया है, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि उनका जीवन आशीषमय हो जाए। पिताजी, आज हम सबसे अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और नीति वचन उसके 16 अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे। यह अत्यधिक अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण अध्याय है। ये छोटे छोटे वाक्य और लंबे लंबे अनुभवों की गाथा है जिसे समय और कष्टों की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा है। उन्हें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही अर्थपूर्ण और वास्तविक बनाया जाता है। नीति वचन हर समय के लिए है। यद्यपि नीति वचन व्यवस्था पालक इसराइली के लिए था, वे हम सबसे भी विशेष रूप से बातें करते हैं, धनवान, गरीब, स्त्री, पुरुष आदि सबके लिए। यह एक ऐसी पुस्तक है जो हम सबके मन को छू लेती है। तो आइए हम नीति वचन 16 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। डॉक्टर एच ए आयरनसाइड इसका अर्थ इस प्रकार दर्शाते हैं, मन के उद्देश्य मनुष्य के होते हैं, परंतु मुंह से निकलने वाली बात यहोवा की ओर से होती है। हमारी भाषा में इसे कहते हैं, मनुष्य सोचता है, परमेश्वर कुछ और करता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 23 पद में लिखा है, मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। आप और मैं योजना बनाकर उसका प्रबंध करते हैं, परंतु जब कहने और करने का समय आता है तब परमेश्वर का निर्णय अंतिम होता है। हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ही है जो अंतिम निर्णय देता है। नीति वचन 16 के 2 पद में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हमने नीति वचन 14 अध्याय उसके 17 पद में इसे देखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यदि आपने भटके हुओं का उद्धार का संदेश सुनाया है या आप प्रचारक या शिक्षक हैं, तो आपको अधिकांश समय जो उत्तर मिलते हैं उन्हें आप जानते हैं। मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मैं पापी नहीं हूं, मेरे साथ समस्या क्या है, मैं परमेश्वर के समक्ष खड़ा हो सकता हूं, मैं एक ईमानदार मनुष्य हूं। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मुझे इससे चुनौती भी दी गई है। जी हाँ, ऐसे अनेक विश्वासी हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर के समक्ष उनका चाल चलन सिद्ध है। यह संपूर्ण विषय पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में समझाया गया है। जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें परमेश्वर के वचन का दर्पण अपने जीवन के सामने रखना है, तो हमें समझ में आएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है और हम परमेश्वर के प्रतिमान में सिद्ध नहीं हैं। आपका समाज आपको सम्मान प्रदान करेगा, कलीसिया आपकी सराहना करेगी, आपके पड़ोसी आपका गुणगान करेंगे, परंतु मेरे मित्रों, जब आप परमेश्वर के वचन की ज्योति में स्वयं को देखेंगे, तब आपको अपनी आवश्यकता का बोध होगा और अपने जीवन के दाग भी दिखाई देंगे। आपको समझ में आएगा कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आपका चाल चलन आपकी अपनी दृष्टि में उचित होगा, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। पहला योहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में स्पष्ट कहा गया है कि हम कहें कि हम उसकी संगति में हैं और अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य को नहीं जानते। योहन्ना मसीही जनों से कह रहा है जो आराधना में आराम से बैठकर दूसरों पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं वे बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। मेरे विचार में कुछ धर्मी जनों ने तो परमेश्वर से भी जगह देने को कह दिया है कि वे उसके बराबर में बैठ जाएं और अपने साथ के विश्वासियों का न्याय करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य का चाल चलन उसकी दृष्टि में उचित है, परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। कई हमारे जवान भाई बहन घर में कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और हैं, इसलिए माता पिता सोचते हैं कि मेरे बेटी या मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उसके जीवन को जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसका चाल चलन उसकी दृष्टि में अच्छा है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। क्या आपने मन को तौलने वाले तराजू देखे हैं? मैं आपको बताता हूं, यह परमेश्वर का वचन है जो तराजू का काम करता है। वह एक दर्पण है, वह एक तराजू है जो कहता है कि आप में कमी है, आप सिद्ध नहीं है। मेरे प्रियो, गलातियों का अध्ययन करवाते समय मुझे कुछ लोगों ने गलत समझा है। वे मुझे लिखते हैं, आपके अनुसार मूसा की व्यवस्था आज के लिए अच्छी नहीं है, वह आज व्यवहारिक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैंने जो कहा वह है व्यवस्था से आपको उद्धार प्राप्त नहीं होगा। पौलुस कहता है कि व्यवस्था भली है, वह एक दर्पण है, वह आप पर प्रकट करती है कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन यह कह सकते हैं कि आप उसमें सिद्ध हैं, तो सच यह है कि आपको व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। व्यवस्था में सिद्धता की अनिवार्यता है जिसे हम नहीं ला सकते, इस कारण हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। व्यवस्था यही कहती है और करती भी है, वह हमें शिक्षक के समान मसीह के पास लेकर आती है, वह आपका हाथ पकड़कर आपको मसीह के क्रूस के पास लाती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। व्यवस्था भली है परंतु आपका उद्धार नहीं करती, वह सिर्फ आपका मार्गदर्शन करती है। यदि परमेश्वर के वचन के सामने भी मनुष्य कहे कि उसका चाल चलन उचित है तो वह अंधा है। परमेश्वर मन को जांचता है। हम मनुष्य बाहरी रूप को देखते हैं परंतु परमेश्वर मन को जांचता है। नीति वचन के पुस्तक 16 अध्याय के 3 पद में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो तो वह सब कुछ संभाल लेगा। मेरे उद्धार का मार्ग यही था। अपनी युवावस्था में मैं घर से दूर चला गया था और पाप में पड़ गया। घर आकर मैं आत्मा में बहुत परेशान था। तब मेरे प्रचारक ने मुझे बताया कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित नहीं है, प्रभु यीशु ने मेरे पाप उठा लिए हैं और मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता हूँ और परमेश्वर के साथ मेरा मेल हो जाता है। उस समय मैंने अपने पाप प्रभु यीशु पर डाल दिए। आज भी मैं कई बार रात में सो नहीं पाता हूँ तो मैं बिस्तर में लेटे कहता हूँ, प्रभु यीशु मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं तुझ में निर्भर करता हूँ। अपने काम परमेश्वर पर डाल दो और आराम करो। क्या आप कल की, अगले सप्ताह की, अगले वर्ष की या अनदेखे संसार की चिंता करते हैं? यह कैसे होगा? आप सब कुछ उसके हाथ में क्यों नहीं दे देते? अपने कामों को यहोवा पर डाल दें। यह कैसा अद्भुत चित्रण है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार मेरे बड़े भाई बहुत बीमार पड़ गए। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और ऐसी स्थिति आ गई कि वो बहुत कमजोर हो गए। मेरे पिताजी का टेलीग्राम आया कि मुझे तुरंत उनके पास जाना है, परंतु मैं वहां नहीं जा सकता था क्योंकि मैं सेवा में व्यस्त था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपने बड़े भाई को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मैंने कहा, प्रभु यदि आप मेरे भाई को जीवित रखना चाहते हैं तो आप उसे जीवित रखें, यदि आप अपने पास ले जाना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है। मित्रों, मैं 3 दिन के बाद अपने भाई से मिलने के लिए गया। जब मैं वहां पर गया तो जिस अस्पताल का मुझे पता दिया गया था वह उस बिस्तरे पर नहीं था, उस अस्पताल में नहीं था, घर पर था। और जब मैं उससे मिला तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया क्योंकि वह व्यक्ति खड़ा था। मेरे मित्रों, जब आप अपने सारी बातों को परमेश्वर पर सौंप देते हैं तो वह अद्भुत कार्य करता है। नीति वचन 16 उसके 4 पद में लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। मेरे मित्रों, यह एक प्रभावी औषधि है। परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है या उसमें ज्वार क्यों आता है? आप कहेंगे कि यह प्रकृति के नियमों के कारण होता है। ये नियम किसने बनाए? समुद्र का पानी खारा क्यों है? परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। वह सृजनहार है और यह उसकी इच्छा है। आप कहेंगे कि यह भूमि का नमक है जो समुद्र में आता है, परंतु वह नमक भूमि में किसने रखा? मैं चिंता नहीं करता कि आप विकासवाद को कहां तक मानते हैं, परंतु यह तो निश्चित है कि आरंभ में कुछ होना आवश्यक है कि आरंभ किया जा सके या आरंभ हो। आप जानते हैं यह किसने आरंभ किया? परमेश्वर ने। यही नहीं, उसने सब कुछ एक उद्देश्य के निमित्त बनाया है, यहां तक कि आपको और मुझे भी। मनुष्य का मुख्य अंत क्या है? मैं वर्षों पूर्व एक शिखा पर था और यह अच्छा है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का महिमान्वयन करना और उसका अनंत आनंद लेना। आप जहां भी हो, जो भी हो, परमेश्वर ने अपने महिमा के निमित्त आपको सृजा है। अब कोई पूछे, सड़क पर भटकने वाले शराबी के बारे में आप क्या कहें? दुष्ट मनुष्य के विषय क्या कहें, खोए हुए मनुष्य के विषय में क्या कहें, क्या वह परमेश्वर के महिमा के लिए है? मेरे प्रियो, यह एक कड़वी औषधि है, क्या आप इसे खाने के लिए तैयार हैं? यह सब परमेश्वर के महिमा के लिए है। आप कहेंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मुझे स्मरण नहीं कि परमेश्वर ने कभी किसी से पूछा हो कि वह उसकी बात को पसंद करता है या नहीं। मुझसे तो उसने कभी नहीं पूछा है। मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि बहुत सी बातें मैं नहीं समझता हूं, और मेरे विचार में मैं परमेश्वर को कुछ अच्छे सुझाव दे सकता हूं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे, मैंने यह जगत तेरे लिए नहीं बनाया है, यह जगत मेरे लिए है, तू भी मेरे ही लिए है, तू अच्छा हो या बुरा हो, तू मेरे लिए महिमा के लिए ही है, तू उद्धार प्राप्त करे या उद्धार से वंचित रहे, मेरे महिमा के लिए ही है। आज परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। आपके विचार में क्या समय नहीं आ गया है कि हम परमेश्वर के कदमों से कदम मिलाकर चलें? वही एकमात्र संचालक है। मेरे मित्रों, अधिकांश मनुष्य सुनिश्चित करते हैं कि वे भीड़ के साथ चलें, सांसारिक चाल चलन को अपनाएं, सुविधा के साथ चलें। मित्रों, मैं नहीं जानता कि इस संसार में सफलता क्या है, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि सब कुछ अंत में परमेश्वर के महिमा के लिए ही है। दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। भजन संहिता 76 उसके 10 पद में लिखा है, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी। वह यह कैसे करेगा मैं नहीं जानता। हम प्रतीक्षा करें, वह एक दिन हमें अवश्य दिखाएगा। क्या आप उस पर भरोसा रखेंगे और अपने मार्ग उसके हाथों में छोड़कर उसके साथ साथ चलेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमेश्वर इस जगत को अपनी योजना और अपने उद्देश्य के निमित्त चला रहा है। एक प्राचीन कहावत है, परमेश्वर की चौपड़ तैयार है, आपको अच्छी लगे या बुरी। परमेश्वर कहता है कि मेरे साथ मत, ऐसा व्यवहार मत कर कि जैसा मेरा अस्तित्व ही नहीं, जैसे यह तुम्हारा जगत है और आप अपने तरीके से इसे चलाएंगे। मैं एक बात समझा देना चाहता हूं कि मेरे साथ खेलोगे तो अवश्य हारोगे। यह मेरा जगत है और मैं अपने तरीके से खेलता हूं, तुम्हारे तरीके से नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा खेल कैसा चलेगा, परंतु तुम नहीं जानते। हमारे लिए एक काम है, परमेश्वर के कदमों से कदम मिला करके चलें। वचन कहता है कि मूर्ख के लिए परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 14:1, इब्रानियों के पत्र 11:6 में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जी हाँ, यह एक औषधि है, यह मनुष्य के लिए अत्यधिक कड़वी है। आइए हम नीति वचन 16 उसके 7 पद को पढ़ें। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। मैंने इस पद से बहुत संघर्ष किया है और विचारकों के मत भी इस विषय में खोजे हैं। इसका अर्थ क्या यह है कि आपके चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न हो तो आपके बैरी नहीं होंगे? यदि यह सच हो तो परमेश्वर का कोई बैरी नहीं होगा, परंतु उसका बैरी है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होता है तो बैरी आपसे घृणा करेगा, परंतु रोचक बात तो यह है कि वे यह अवश्य स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर आपको काम में ले रहा है। यही एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे बारे में किसी ने एक अति उत्तम बात कही, मैं उससे घृणा करता हूं और वह परमेश्वर का वचन सिखाता है। मैं उससे कहता हूं, मेरे बैरी धन्यवाद, आप इस नीति वचन को पूरा करते हैं, यदि आप सत्यनिष्ठ हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा, मुझे यह नीति वचन बहुत पसंद है। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय के 11 पद में लिखा है, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। यह वचन कसाई, रसोईया और मोमबत्ती बनाने वाले के लिए भी है। नीति वचन 16 के 18 पद में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मैंने इसे अपनी बाइबल में रेखांकित किया हुआ है क्योंकि यह बहुतों के जीवन में हम देखते हैं। नीति वचन 16 के 19 में लिखा है, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। यहाँ फिर परमेश्वर के घृणित वस्तु का नाम दिया गया है, घमंड। परमेश्वर की घृणा सूची में घमंड पहला है। नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 16 से 19 पद में हम इसे पढ़ते हैं, घमंड ही के कारण प्रधान स्वर्गदूत शैतान बना था, वह भोर का सितारा था जिसका नाम लूसीफर था। परमेश्वर की सर्वोच्च सृष्टि थी, उसके जीवन में पाप आ गया। यह पाप क्या था? घमंड। उसने परमेश्वर से ऊंचा होने की ठानी क्योंकि उसे परमेश्वर ने अति महान बनाया था, उसे परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा भी दी थी। मेरे मित्रों, स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर की सृष्टि को दिया गया एक अति खतरनाक साधन है। कुछ पशु पक्षी सहज वृत्ति के कारण ठंडे से गर्म स्थान में आते हैं, यह उनकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। मनुष्य में परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा निहित की है, परंतु इस स्वतंत्र इच्छा के साथ परमेश्वर से विद्रोह और घमंड करने की संभावना भी है। धर्म शास्त्र में इसके अनेक उदाहरण हैं। एस्तर की पुस्तक में हमान, अबशालोम का अपने पिता दाऊद से विद्रोह, पलिस्ती गोलियत का घमंड, आहाब का घमंड आदि पाए जाते हैं। नीति वचन 16 उसके 24 पद में लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। मन भावने वचन, हमें अच्छे शब्द सुनना अच्छा लगता है। समाचार पत्रों में तो आपको बुरा समाचार ही सुनने को मिलता है, परंतु दुख की बात तो यह है कि मनुष्य प्रायः बाइबल नहीं पढ़ता है। बाइबल में तो सब अच्छा समाचार है। हमें मन भावन शब्द काम में लेना चाहिए, न कि समय निकल जाने के बाद फूलों से मान प्रदान करना है। नीति वचन 16 उसके 25 में लिखा हुआ है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आपको ध्यान होगा कि हमारे पास नीति वचन 14 उसके 12 में भी यही बात है। इसे फिर से कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इससे चूकें। किसी बात को दो बार कहने से उसका महत्व प्रकट होता है। नीति वचन 16 उसके 27 पद में लिखा है, अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। हम किसी न किसी को तो जानते ही हैं जिस पर यह नीति वचन सप्रसंग बैठता है। मेरा एक मित्र है जो जब भी मुझसे भेंट करता है तो कहता है, आप जानते हैं। तब वह ताजी ताजी और बड़ी रोचक अफवाह सुनाता है। क्या वह ईश्वर भक्त है? मैं नहीं जानता। मैं न्याय करना भी नहीं चाहता। हमें अपनी जीभ और मुंह को वश में रखना है कि इससे हम बचें। नीति वचन 16 के 28 पद में लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हमने पहले कहा है कि कुछ लोग हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोग बुराई फैलाकर मित्रों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। नीति वचन 16 उसके 31 पद में लिखा है, पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक अच्छा नारा है। नीति वचन 16 के 33 में आगे लिखा है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। एस्तेर की पुस्तक में यह पद लिखा हुआ है, हमान ने यहूदियों के विनाश के लिए चिट्ठी डालकर दिन निश्चित किया, परंतु परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके यहूदियों को बचा लिया और उसके उपलक्ष्य में प्यूरीम अर्थात चिट्ठियां का पर्व मनाया जाता है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर का चौपड़ तैयार है, परमेश्वर के साथ ना खेलें। सदा स्मरण रखें कि यह परमेश्वर का जगत है और उसके महिमा के उद्देश्य के निमित्त है। क्या आप उसको सहयोग देंगे या आप उससे दूर जाएंगे? क्या आप परमेश्वर के साथ चलेंगे या विद्रोह करेंगे? यह आपकी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। काश हम परमेश्वर के साथ चलें और उससे मेल करें। विश्वास द्वारा हम धर्मी ठहरें। मेरे मित्रों, आइए आज हम इस बात का निर्णय ले लें कि प्रभु हम आपके साथ में चलना चाहते हैं, क्योंकि जगत आपका है, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे जीवन को भी आप जानते हैं। जब ऐसा आप मान लेंगे तो वह आपको आशीष देगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हमको है यकीन, हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है। हमको है यकीन, हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है। यीशु कोई दुश्मनी पर कोई शांति रहेगी, न कोई भूख होगी, न कोई प्यास होगी, न कोई उलझन होगी, न कोई दुख होगा, न कोई दुश्मनी पर कोई शांति। रहेगी, हमको है यकीन।